श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तात्पर्य, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य साख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और इसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। तो ध्यान देना चाहिए कि भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान का सानिध्य अपने आप प्राप्त होता है और जिससे भक्त को एक आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, और इस कारण से भक्त इस भावना से पूरित हो जाता है कि मुझे और भगवान का सानिध्य चाहिए, मुझे और भगवान का सानिध्य चाहिए। वस्तुतः भगवान की भक्ति में भी आनंद तो बहुत है, लेकिन भक्ति में कोई संतुष्टि नहीं है। भोगों में भी कोई संतुष्टि नहीं है, लेकिन भोगों में कोई सुख नहीं है, केवल दुख ही दुख है। लेकिन भक्ति के द्वारा भक्त को आनंद मिलता है, लेकिन उस आनंद से वो संतुष्ट नहीं होता और भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। तो अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति में प्रगति कर रहा है तो ये लक्षण उसके जीवन में प्रकट होने चाहिए, यानी अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, भगवान के स्वरूप के चिंतन में, भगवान की सेवा में ही लगे रहना अनन्य भाव से, ये शुद्ध भक्त का लक्षण रहता है। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है और यह योग कहलाता है। योग का अर्थ है वो साधन जिससे असंभव कार्य भी संभव हो जाए। तो भगवान के पास पहुंचना तो संभव है, लेकिन भगवान की भक्ति के द्वारा ही संभव हो जाता है। अन्यथा हम इस भौतिक जगत से निकल पाए, माया से मुक्त हो पाए, इस प्राय असंभव है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा माय संरक्षण। मतलब ऐसा नहीं है कि भक्त के कर्मों के अनुसार भगवान संरक्षण देते हैं, बल्कि भगवान भक्त के प्रेम के कारण द्रवीभूत होते हैं, या कह सकते हैं भगवान की सहज कृपा है सभी जीवों के प्रति, लेकिन उस भक्त के प्रेम के कारण और कृपा उस पर बरसती है, पर्टिकुलरली उसके ऊपर बरसती है, और भगवान उसका कृपा उसके द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा संरक्षण करते हैं। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। अर्थात भगवान हमें भगवान की कृपा से ही भक्ति में आगे प्रगति करते हैं, और भगवान ही ध्यान रखते हैं कि भक्त वापस भौतिक धरातल पर ना गिरे। इस संबंध में मैं आचार्यों की टीका पढ़ रहा था, तो आचार्य बताते हैं कि जब कोई भगवान कृष्ण की भक्ति करने में लगता है तो भगवान इच्छा करते हैं उसको निर्गुण अवस्था पे लेके जाने के लिए। अर्थात तुरंत निर्गुण नहीं बनाते, लेकिन संकल्प कर लेते हैं, इच्छा कर लेते हैं कि इस व्यक्ति को मुझे निर्गुण अवस्था पे, त्रिगुण अवस्था से पार लेके जाना है। तो बड़ा अच्छा है, और आप देख सकते हैं कि ये भगवान का इंटरफेरेंस इस प्रकार से वेदवादियों में या और ज्ञान यज्ञ करने वालों में नहीं होता। जो अनन्य भाव से कृष्ण का भजन कर रहे हैं उन्हीं के प्रति होता है। तो अब हम जरा श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर की कमेंट्री को देखेंगे, जिसमें कहते हैं कि जो सुख वेदवादियों को स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हुआ था वो उनके पुण्यों की वजह से हुआ था, और इस कारण से जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वो गिर जाते हैं। लेकिन यहां जो भगवान के अनन्य भक्त हैं उनका सुख भगवान के द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है, वो उनके पुण्यों के कारण नहीं होता। वो नित्यम हमेशा ही इन सब बातों में समझते हैं, और इसी कारण से अभियुक्तम, वो हमेशा ही भगवान के बारे में ही कह सकते हैं, भगवान के बारे में ही चिंतन करते हैं, और अन्य वस्तुओं के प्रति उनको ज्ञान ही नहीं रहता कि अन्य भगवान कृष्ण की भक्ति के अलावा और कुछ करना है, इसका वो चिंतन ही नहीं करते। और अन्यथा इसका अर्थ हो सकता है कि वो भगवान का संग लगातार चाहते हैं, अभियुक्तम, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान स्वयं ही उनके धन की व्यवस्था करते हैं, और यानी योग, और क्षेमम अर्थात वो उनके पोषण की व्यवस्था करते हैं। और साथ साथ ये समझना चाहिए कि वो भक्त भगवान से ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा है कि भगवान मेरा भरण पोषण करें व्यक्तिगत रूप से, लेकिन भगवान स्वयं ही करते हैं। भगवान के लिए ये कहना पूर्णतः उचित नहीं होगा कि वो इन कार्य को केवल करते मात्र हैं। यहां पे वहां में शब्द है कि भगवान स्वयं उठा के लेके आते हैं, यानी कि वहामिक अर्थ यह है कि भगवान इस वजन को या इस दायित्व को धारण करते हैं। क्या वजन है? उस भक्त के शरीर को पोषण करने के दायित्व को धारण करते हैं, जिस प्रकार से एक गृहस्थ व्यक्ति अपने बच्चे और अपनी पत्नी के पोषण के दायित्व को धारण करता है। तो इसीलिए ध्यान देना चाहिए कि अन्य लोगों की प्रकार से अन्य लोगों का शरीर और उनका जो सुख है वो उनके कर्मों के अनुसार होता है, लेकिन एक भक्त के जीवन में आने वाले सुख जो और या फिर भौतिक आवश्यकताएं वो कर्म के आधार पर नहीं बल्कि भगवान की इच्छा से भगवान की कृपा के द्वारा प्रदत्त की जाती हैं। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवान आप तो आत्मराम हैं, आप तो अपने आप में ही आनंद लेते हैं और हर प्रकार की अन्य वस्तुओं से इतर वस्तुओं से आपको मतलब ही नहीं होता, तो फिर आप किसी का दायित्व स्वयं लेंगे ऐसा क्यों होगा? तो श्रुतियां कहती हैं भक्तिरस्य भजनम तदैह मूत्रोपाधि नैशय नैराश्येना मुष्मिन मनः कल्पनम एतद एव नैष्कर्म्यम। भक्ति का अर्थ है भगवान की उपासना करना जिसमें मन को उनमें आविष्ट किया जाता है और हर प्रकार की भौतिक उपाधि और इच्छा को त्याग दिया जाता है इस जगत में और आने वाले जगत में भी, यानी कि स्वर्ग इत्यादि की अभिलाषा को भी त्याग दिया जाता है और ये हर प्रकार के कर्म को नष्ट करती है भक्ति। तो ये गोपाल अपने उपनिषद के 1.15 श्लोक को उद्धरण आचार्य देते हैं। तो बता रहे हैं कि क्योंकि मेरा जो अनन्य भक्त है उसका कोई कर्म ही नहीं रहता, क्योंकि उसके हृदय में नैष्कर्म अर्थात भोग की वासना नहीं रहती। इस कारण से उस भक्त के जीवन में जो सुख आ रहा है वो कर्म के अनुसार नहीं आता है, समझना चाहिए, अपितु भगवान की कृपा के अनुसार आया है। हाँ, ये भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि वो सभी अन्य वस्तुओं के प्रति उदासीन हैं, लेकिन अपने भक्त के प्रति नहीं है। अपने भक्त से वो बहुत प्रेम करते हैं, इसी कारण से अपने भक्तों के दायित्व वो स्वयं धारण करते हैं। अब कोई व्यक्ति ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान कृष्ण को अपना दायित्व देने के कारण ये प्रमाण होता है कि भक्तों का भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं है। ना, भगवान यहां पे स्पष्ट कर रहे हैं और समझ में आना चाहिए कि भक्त अपना दायित्व अपना बोझ भगवान को नहीं देते, अपितु भगवान स्वयं अपनी इच्छा से उसको स्वीकार करते हैं। ये ध्यान देना चाहिए कि भगवान इस दायित्व को एक कर्तव्य बुद्धि से नहीं उठा रहे कि अब क्या करें, मेरा भजन कर रहा है मुझे करना चाहिए, अपितु जैसे कि भगवान इस जगत को धारण करते हैं, भगवान इस जगत को भी भरण पोषण करते हैं, लेकिन कर्तव्य बुद्धि से कि जगत में जीवों को भोग करना है तो मैं ही पोषण करने वाला हूं इसलिए पोषण करता हूं, लेकिन इस कर्तव्य बुद्धि से भगवान अपने भक्तों का पोषण नहीं करते हैं, बल्कि अपने भक्तों से भगवान बहुत आसक्त होते हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में बहुत आनंद की अनुभूति करते हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने प्रेमी को धारण करता है, प्रेमी को उठाता है तो उसके वजन को बड़े प्रेम से उठाता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में बहुत सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन कोई प्रश्न कर सकता है कि अगर ये भगवान इतने प्रेमी है, अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, तो फिर लोग अन्य अन्य देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? उसको भगवान अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।